जेनी गुस्से में संदीप को देखते हुए इंग्लिश में ही कहती है, लगता है इंडिया आके अपनी तमीज भूल गए हो। मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मुझे तुम कहकर बुला रहे हो। अगर स्काई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। सॉरी मैडम, लेकिन आपको अचानक देखा तो मैं घबरा गया। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपने बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता, संदीप घबराते हुए कहता है। तो जेनी अपना लगेज लेकर अंदर आती है और सोफे पर बैठते हुए कहती है, बताने की तो बहुत कोशिश की थी, पर तुम लोग ठीक से बात करोगे तो ना कुछ बता पाऊंगी। कितने कॉल किए हैं मैंने तुम्हें, कितने मैसेज किए हैं कि मुझे स्काई से बात करनी है, मुझे स्काई का नंबर चाहिए, मुझे स्काई से बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर तुम हो कि ना तो मेरी उससे बात करवा रहे हो और ना ही मुझे उसका नंबर दे रहे हो। ऐसे में मुझे इंडिया आना ही पड़ा। संदीप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने मन में ही जेनी को देखते हुए कहता है, ओह गॉड, जेनी इंडिया आ गई है। और बॉस, वो तो शादी कर चुके हैं और ये बात अभी तक जेनी को पता नहीं है। अगर उसे ये बात पता चली तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बॉस और जेनी आमने सामने नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तूफान आ जाएगा, क्योंकि जेनी जिस हद तक बॉस के लिए पागल है वो हम सब देख ही चुके हैं। संदीप अपने आप में ही ये सब बड़बड़ाए जा रहा था, और वो भी हिंदी में ही। जेनी को समझ ही नहीं आया कि संदीप बोल क्या रहा है। वो गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? जो बोल रहे हो इंग्लिश में बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पहले मुझे ये बताओ कि स्काई कहाँ है। संदीप डर जाता है। वो अभी जेनी को स्काई के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसने घबराते हुए कहा, मैडम, बॉस इस समय ऑफिस में होंगे, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आपके बारे में उन्हें बताऊंगा। आप एक काम कीजिए ना, वो गेस्ट रूम है, जाकर वहां आराम कीजिए। जेनी अपना लगेज लेती है और गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के साथ ही संदीप एक चैन की सांस लेता है, लेकिन अभी उसे चैन कहाँ मिलने वाला था? जेनी यहाँ पर है और आने के साथ ही स्काई के बारे में पूछ रही है। इसका मतलब जब तक संदीप आकाश के बारे में उसे बात नहीं देगा या उसे मिलने नहीं देगा, तब तक वो उसके सर पर चढ़कर तांडव ही करती रहेगी। उसने सोचा इस बारे में किसी से हेल्प लेनी चाहिए या फिर किसी से पूछना चाहिए कि जेनी को वापस किस तरीके से भेजा जा सकता है। इसलिए वो अमेरिका में अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ ढूंढ पाता या फिर कुछ समझ पाता, गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुलता है और जेनी फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, ट्रैवलिंग के कपड़े उसने उतार दिए थे और अब उसने नॉर्मल सा वन पीस ड्रेस पहन रखा था। वो संदीप के पास आते हुए कहती है, मुझे स्काई के ऑफिस जाना है। अभी संदीप घबरा जाता है। जेनी तो एक पैर पर खड़े होकर उसे आकाश से मिलने की जिद कर रही है। संदीप जेनी को देखता है और घबराते हुए कहता है, मैडम, आप इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गई हैं? मेरा मतलब ये है कि आप अभी अभी तो आई हैं, आपको इस समय जेट लैग हो रहा होगा, आप जाकर थोड़ी देर सो जाइए। जब आप सोकर उठेंगी तो फ्रेश फील करेंगी और उसके बाद मैं आपको पक्का सर से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगी तो शायद ठीक नहीं होगा, आपके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है, प्लीज आप जाकर सो जाइए ना। जेनी गुस्से में कहती है, मुझे जितना आराम करना था मैं फ्लाइट में कर चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ स्काई से मिलना है, तो मुझे चुपचाप स्काई के पास ले जाओ, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी स्काई का ऑफिस का एड्रेस। जब मैं इंडिया उसके लिए आ सकती हूँ तो उसका ऑफिस तो इसी शहर में है, मुझे यहाँ ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेनी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि संदीप उसके सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे रोकते हुए कहता है, मैडम, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकती हैं। जेनी गुस्से में उसे घूरते हुए संदीप को देखती हैं और कहती हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? संदीप जल्दी से कहते हैं, मैडम, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस वक्त आराम कर लीजिए, जब तक बॉस यहाँ नहीं है आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर बॉस को पता चलेगा कि मैंने आपकी देखभाल नहीं की, तो प्लीज मैडम अभी जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप सोकर उठेंगी तो मैं पक्का आपको बॉस से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। महल में तीज की तैयारी हो गई थी, लेकिन आकाश अभी तक घर वापस नहीं आया था। शाम की पूजा के बाद ही सभी औरतों ने निर्जला उपवास रख लिया था, भूमि ने भी तीज का उपवास रख लिया था, और सुबह आकाश का जो भी रवैया था उसके बाद से ही उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या आकाश पूजा में आएगा या नहीं, कहीं उसका पहला तीज का त्योहार अधूरा तो नहीं रह जाएगा। अरुणिमा अपने कमरे में थी और बालकनी के पास खड़े होकर वो भी आकाश और भूमि के बारे में सोच रही थी, तभी उसके सर पर कुछ आता है। वो हैरानी से पीछे पलट कर देखती है तो पीछे आस्तिक खड़ा था और उसके हाथों में एक बनारसी साड़ी थी। उसने वो साड़ी का आंचल अरुणिमा के सर पर रखा था। अरुणिमा उसे देखती है तो आस्तिक वापस उस आंचल को उसके सर से हटाते हुए कहता है, क्या बात है अरु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे तो लगा कि मेरे लिए तीज का उपवास रखकर तुम खुश होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, क्या बात है? क्या तुम ये व्रत रखना नहीं चाहती थी? ऐसी बात नहीं है आस्तिक, और आपको किसने कहा कि मैं कभी आपके लिए तीज का उपवास नहीं रखना है? इतने सालों में एक भी बार ऐसा नहीं आया है जब मैंने आपके लिए तीज का व्रत ना रखा हो। हमारा रिश्ता जिन भी हालातों से गुजरा था, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी हूँ और अपने बच्चों के साथ मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, और उस नई जिंदगी में मैंने देखा था कि आपने किस तरीके से हमारा साथ दिया था, हमें सहारा दिया था, किस तरीके से मुझे और अनंत को संभाला था, इसलिए मेरे दिल में आपके लिए जो भी कड़वाहट थी वो धीरे धीरे कम होती गई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार आ गया है, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ भी था वो गुजरा हुआ कल था, उसमें ना ही मेरी गलती थी और ना ही आपकी। अगर बुरा मेरे साथ हुआ था तो सही आपके साथ भी नहीं हुआ था। मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए।